السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يعتذرون، 11واں پارہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94، یعنی آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی بھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. ہاں وہ اب تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل ہی گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. یحلفون لکم لتردو انہم، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کو ان احکام کا علم نہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. ہم میں سے تو نہیں کوئی ایسا سمجھتا. اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، برا وقت ان پر آ ہی پڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے قربت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت کرنے والا ہے. یہ ہے پہلا رکوع 11ویں پارے کا. اس کا عنوان کیا ہے؟ تبوک سے بات. تبوک کے بعد لکھ لیں یا سے بات لکھ لیں. یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے سفر سے واپسی پہ نازل ہوا. جب وہ لوگ، ہم سن چکے پیچھے والی حصے میں کہ جب تبوک کے لیے دعوت جہاد ہوئی تو لوگ مختلف عذر اور بہانے کر کے گھروں میں رہ گئے. جب ان کو شک تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت مشکل حالات ہوں گے، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہوا، جنگ ہوئی ہی نہیں جس کا ڈر تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ کے قریب مسلمان وہاں گئے رہے دیکھا، لیکن جب قیصر روم نے مسلمانوں کے آنے کی خبر سنی اس کے دل پہ اتنی دھاک بیٹھ گئی اور وہ واپس چلا گیا، یعنی وِدڈرا کر دیا. مسلمان وہاں رہے، وہاں سے مال غنیمت ملا اور فائدے ملے، لیکن کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا، کوئی تیر نہیں چلا، کوئی تلوار نہیں اٹھی. میں تو اس غزوہ تبوک، یعنی یہ جو غزوہ تبوک سے میں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ سیکھا، یقین کریں کہ واقعی میں نے سوچا کہ ہم بالکل بیکار بات کرتے ہیں، کہ اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ بندہ قدم آگے رکھ کے دیکھ لے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا بال کا بیکا بھی نہیں کرتا. یعنی اگر ایک جملہ آپ لکھ لیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا بال کا بیکا بھی نہیں ہوتا, تو یقین کریں بہت بڑی غلط فہمی جو لوگوں کے دل میں ہے دین کے ناطے سے وہ دور ہو جائے گی. نکلے, صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کون جاتا ہے. مشکل حالات تھے, گرمی تھی, پیدل چلے, بھوک سہی, بس یہی اجر بہت ہوتا ہے, لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے بہت سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے. اب جب مسلمان اتنی بڑی سپر پاور کے جواب میں واپس آ رہے ہیں عافیت کے ساتھ, تو اب وہ منافق جو گھروں میں رہ چکے تھے بہانے عذر کر کے, ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کریں گے کیا. یہ ایسے ہی نا جیسے کوئی پیچھے سے خوب عیش کر لے, لیکن جب ماں باپ کے آنے کا گھر میں وقت ہوتا ہے تو پھر ان کو فکر لگ جاتی ہے, ذرا جلدی سے گھر صاف کر دو, چیزیں ٹھیک کر دو, ممی آنے والی ہیں. تو پھر اب ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کس منہ سے جواب دیں گے. دیکھیں آج ہم ان کو منافق کہہ رہے ہیں نا, وہ تو نہیں کہتے تھے خود کو, وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, تو ان کو یہ تھا آخر کہیں تو ملاقات ہونی ہے نا, کہیں ملیں گے مسجدوں میں نماز میں تو شرم آئے گی. لہٰذا انہوں نے عذر تراشنے شروع کر دیے. اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے راستے میں ہی آیتیں اتار دی کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, ابھی تم گئے نہیں لیکن دیکھنا جب تم جاؤ گے تو پھر یہ عذر لے کے آئیں گے, تو ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی. نمبر ایک, کہ ان سے کہو کہ بہانے نہ کرو, تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں. دوسری بات, کہ اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. دھمکی ہے اس میں کہ اب دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا کرتے ہو, ماضی کو چھوڑو آگے چلو. تیسری چیز, ان کو خبر دینا کہ اللہ تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے, تاکہ ان کو احساس ہو. اب دیکھیں ایک ایک بات جو ہے شعور کو بیدار کرنے والی ہے. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ ان سے صرف نظر کرو, مت دیکھو ان کی طرف, یہ تو گندگی ہے, چھوڑو. کہتے ہیں جو کہتے ہیں مانتے جاؤ, بحث نہ کرو, تحقیقات نہ کرو, مان جاؤ. اور پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اگر کبھی دین کے راستے میں کسی دعوت سے پیچھے رہیں یا دین کے کسی کام سے اپنی مرضی سے پیچھے رہیں, تو بعد میں اس پہ جھوٹے عذر کر کے مزید گناہ در گناہ کرنے کی بجائے اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ آئندہ مجھے ایسی توفیق نہ دے, اور پھر جس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اس کے سامنے جا کے کنفیس کر لینا چاہیے. اس کے بعد رکوع کے دوسرے حصے میں اعراب کا ذکر تھا. اعرابی کون تھے؟ بدوی لوگ. مدینہ جو تھا اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے. ان میں سے چونکہ شہر سے دور تھے یہ لوگ, وہ تعلیمات ان لوگوں تک نہیں پہنچی ہوئی تھیں جو کہ شہر والوں کو سہولتیں تھیں. اس کی وجہ سے ان میں منافقوں کی کثرت تھی. کچھ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس کے بعد انہوں نے اسلام تو قبول کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی نا, کیونکہ اسلام قبول کرنا تو ایک سیڑھی ہے, لیکن اس کے بعد کے مرحلے جو ایک استاد کے ساتھ بندہ سیکھتا ہے وہ نہیں ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے منافق جو بدوی لوگ ہیں ان کے بارے میں پانچ باتیں ہمارے سامنے رکھی. کون کون سی؟ نمبر ایک, یہ لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں, اور اس بات کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے کہ جو دیہات میں رہے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ, یہ تو ایک تعصب بتانے والی بات ہے, تو ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جب جیسی چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے ویسا ہونے لگتا ہے. دیہاتوں میں عموماً جانوروں کی کثرت ہوتی ہے, مطلب لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں, زمین بھی سخت چیز ہے, اس کو پھاڑتے ہیں, جانور بھی عقل اور فہم سے دور ہے, لہٰذا ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا بھی مزاج بدلنے لگتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کہ انجینئر ہے, وہ اتنے سینسٹیو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیچ میں رہتے ہیں. مثلا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب کمپیوٹر کھولتے ہیں تو اس کے اندر اتنے بے شمار قسم کے کنیکشنز ہوتے ہیں کہ ہم جیسا بندہ تو دیکھ کے اس کو گھبرا جائے, لیکن وہ اس میں باریک باریک جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کا ذہن کتنا باریک کام کر رہا ہے, ہم نہیں کر پا رہے. لہٰذا انسان شارپ ہوتا ہے, یعنی آج کے ہمارے یہاں پلنے والے بچے جو اس ماحول میں پڑھتے ہیں, جو اس ماحول میں سائنس کے دور میں ہیں, ترقی میں, پورا یقین رکھیے کہ یہ ہم سے ذہنی طور پہ زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کی صلاحیتیں اس بچے سے جو کسی دیہات سے پڑھ کے آتا ہے بہت فرق ہے, اور اس کو ریئلائز کرنا چاہیے, کوئی بری بات نہیں. لیکن دعا کیا کرنی چاہیے کہ ان کی یہ صلاحیتیں خیر کے کام میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھے اچھے کام کروائے. پھر دوسری, علم کی کمی بھی ہوتی ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین کی حدوں سے ناواقف ہیں, ये चीज मैं देखती हूँ तो मेरे सामने घरों में काम करने वाली खवातीन और वो लोग जो बेचारे देहातों से आते हैं घरों में खिदमत करने हमारे, आपने कभी उनको देखा होगा, लिबास हिजाब का उनको पता नहीं। वैसे अगर कोई मॉडर्न औरत पर दुपट्टा ना लेके निकले तो सब उस पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन अमूमन आप तसव्वुर में लाएं जब ये घरों में काम करने वाली खवातीन आती हैं, बाज़ दफ़ा उनके सर गले में भी सही दुपट्टा नहीं होता, उनको शऊर ही नहीं होता कि हमारा जिस्म देख रहा है काम करते वक्त, बिल्कुल एक जहालत की कैफियत है। तो यही बात है कि ये हदूद को नहीं मानते। आप कहेंगे फिर इनका क्या होगा, एक मॉडर्न औरत दुपट्टा उतार ले तो उसका और इसका मामला क्या है? तो याद रखिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर बंदे से उसकी वुसअत के मुताबिक हिसाब होगा। जिसको जितना इल्म मिला, मौके मिले हिदायत को पाने के, इख्तियार करने के, उसका हिसाब सख्त होगा। अल्लाह ताला के हुक्म से अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ऐसे लोगों को जब नेमते ज्यादा नहीं मिली तो इंशाल्लाह इनके साथ हिसाब भी आसान होगा। तीसरी चीज हमें बहुत ही खूबसूरत, जो बहुत दिलचस्प लगती है मुझे, वो क्या कि अल्लाह के राह में अगर इनको खर्च करना पड़े तो कहते हैं कि ये जुर्माना है। ये जहालत की बात है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़े तो इंसान जुर्माना कहे। मतलब ये यानी ज़कात देते हुए बहुत पीछे रहते थे, या अगर कभी इनसे डोनेशन की बात या कोई ऐसी की जाए तो पीछे रहते थे। बल्कि एक मैं रिवायत पढ़ रही थी कि एक दफ़ा एक बदवी था तो उसने नबी सल्लम को तोहफा दिया, और जब तक नबी सल्लम ने जवाब में उसको उससे बड़ा तोहफा ना दे दिया उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा, और उसके बाद फिर नबी सल्लम ने किसी बदवी से तोहफा नहीं लिया। ये मैंने खुद हदीस पढ़ी इब्ने कसीर में, बहुत पहले पढ़ी थी जब पढ़ते हुए। तो ये हकीकत है कि आप देखिए जब शादियों के मौके पर जो बैठ के लेन देन कर रहे होते हैं, एक आता है वो कहता है मैंने 50 दिए थे, वो 51, और फिर वो पूछ पूछ के ले रहे होते हैं तुम्हें मैंने इतने दिए थे लिए थे। अल्लाह ताला को शायद इनकी इस मासूमियत पे भी प्यार आता होगा, लेकिन ये है कि असल बात यहाँ जो है वो ये है कि उनको शऊर नहीं है। चौथी चीज इनकी बताई कि नबी सल्लम के बारे में गर्दिश जमाना के मुंतजर रहते हैं, कहते हैं कुछ नहीं देखना ये चंद दिन की बात है फिर पलट जाएंगे, ये सब देखना ऐसा हो जाएगा और वैसा होगा। ये तो लोगों को एक बार जोश आया हुआ इस वक्त दीन का, और जब रमजान खत्म होगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कुछ ऐसी सोच रखते हैं। और पांचवी बात क्या है कि जो बदी ये इन पे चाहते हैं ये इन्हीं के ऊपर पलटेगी, लेकिन सारे ऐसे नहीं। फिर अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने कुछ ईमान वाले बदुओं का जिक्र भी किया, उनकी तीन बातें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी। नंबर एक, अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान लाते हैं। दूसरी बात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझते हैं और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। इनका अंजाम क्या होगा? सयुदखिलुहुमुल्लाहुफी रहमती, अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। हमने इससे क्या सीखा? पहली बात यह है कि जानते बूझते इल्म से दूर नहीं रहना। किसी को, आपको पता है कि किसी अच्छे जगह पे रहने का मौका मिलना भी एक नेमत है। अगर आज हम लोग यहाँ बहुत एडवांस दौर में रहते हैं तो ये अल्लाह की नेमत है, इसका इनकार नहीं। अच्छे बुरे का बात बात की है, लेकिन ये एक नेमत है, लिहाजा इसका हिसाब भी ज्यादा होगा। दूसरी बात हमने इससे क्या सीखी कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च होता है उसको अपने ऊपर एक जुर्माना नहीं समझना। जरा अपना जायजा तो लें, हम अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करते हैं, अमूमन क्या खर्च होता है? डोनेशंस तो हम अपनी खुशी से देते हैं, उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं सोचते, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जब हम अल्लाह के दीन के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं अपने ही लिए, अपनी ज़ात के लिए, कोई कागज़, कोई पेंसिल, कोई किताब, या हमारी गाड़ियों की गैस या कोई और, तो हम उसको बहुत गिनते हैं कि इस महीने गैस का बिल बहुत आया, वो अच्छा पूरा महीना गई थी दौरे कुरान सुनने, ये जुर्माना लगता है हमें। कभी किताब को लेनी पड़े तो लोग गिन गिन के पूछते हैं कि अच्छा कितने की, अच्छा ये तो बड़ी मुश्किल है, अच्छा ये करें, और इतनी बड़ी बड़ी नेमतें जो मिलने वाली होती हैं सिर्फ उससे महरूम हो जाते हैं कि हर रोज़ एक या दो डॉलर खर्च नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमने इसमें क्या सोचना है कि अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया है नेकी का, उस पर माल खर्च करना है और उसको अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझना है। माल तो वैसे भी चला जाएगा हमारे हाथ से, लेकिन अपने हाथ से देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। और फिर इसके बाद एक और चीज़ हमने क्या सीखी इस पूरे रुकू में, कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को लेने की कोशिश करनी है। अल्लाह के नबी की दुआ किसको मिलती है? वो लोग بہت ساری احادیث ہیں ایسی جو اس موضوع پہ ہیں, لیکن ایک دعا اللہ کے نبی نے دی کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کو یاد کیا اور آگے پہنچایا جیسے کہ اس نے سنی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. چلیے رکوع نمبر دو پہ چلیں. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں یعنی آگے بڑھنے والے ہیں, اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے, اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو کچھ تمہارے گرد پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, ان کو ہم جانتے ہیں, ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا وآخر سيئا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی خطاؤں کے اقراری ہیں, جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے, اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقہ, آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں, اور ان کے لیے دعا کیجئے, بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ, کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ, تمہارے عمل خود اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے, اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے, سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبهم و اما یتوب علیہم, اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے, ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا, اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے, اور قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے ہماری کوئی نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل ہی جھوٹے ہیں. آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں, البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر آیا ایسا شخص بھلا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودگی پر رکھی ہو, یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو, پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی, ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر, اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر دو, اس کا نام ہے اور وہ اقرار کرنے والے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں دکھائیں. رکوع کے ابتدا میں سابقون الاولون کا ذکر ہوا, پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں, یعنی ہر کام میں آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک تو مہاجر اور انصار ہیں, फिर वो लोग जिन्होंने अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा, यानी दावत ईमान कबूल किया, यानी बहुत सारे इसके अंदर राय मिलती है कि कौन से लोग हैं जो साबिकून अल और अव्वलून में से हैं। तो वो लोग जिन्होंने ईमान की दावत पर लब्बैक कहा फौरन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ैद, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे तमाम लोग, इनकी बात हुई। इनके बारे में अल्लाह ने अपना फ़ैसला बताया कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह रब से राज़ी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत और ऐसे बागात जिसके नीचे नहरें बहती हैं बनाए हैं, और यही लोग हैं वो कामयाब होने वाले। हमारा अमल इसमें क्या होना चाहिए? बड़ा साफ है, किसी काम में पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है। जैसे दुनिया के कामों में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही दीन के कामों में आगे बढ़ना है। वो ईमान लाने वाली बात हो या अमल रहने वाली बात हो, हमने अपने आप को साबिकून अल अव्वलून में शामिल करना है। या तो मुहाजिर बन के जीना है या अंसार बन के जीना है। अल्लाह का हुक्म सुन के पीछे नहीं रहना, हर इंसान की ज़िंदगी में ये मोड़ आता है, अल्लाह ताला उसको मौका देता है कि वो दीन के काम में दूसरों से आगे निकल जाए। कुछ लोग उस मौके को ज़ाया कर देते हैं और फिर वो मौका शायद कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं आता। हम ज़िंदगी में जब किसी को देखते हैं कि वो किसी काम में आगे बढ़ता है तो हम बड़ा रश करते हैं उस पर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद आगे हमारे लिए भी कोई और मौका आता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी ज़िंदगी में सोचिए, बल्कि अपने लिए इस चीज़ को एक कमिटमेंट के तौर पर लीजिए कि मैंने वाकई अब कोई ऐसी नेकी करनी है जो मैं शुरू करूँ। शायद आप लोग इस तरह सोचते हैं कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जैसे होता है ना, इंसान अपने से बातें करता रहता है, तो मेरा दिल या जिसको आप कहें आप, मेरा दिमाग हर वक्त इस कोशिश में होता है कोई नया आइडिया, कोई नई बात जो किसी ने ना की हो, जिसकी ज़रूरत हो, और जो काम मेरी ज़ात से शुरू हो जाए। अब देखिए कि एक काम की आप बुनियाद डाल देते हैं, फिर उसके बाद उस काम को बहुत लोग करते हैं। बस लोग इससे बुरा मनाते हैं, देखो हमारी कॉपी कर ली, देखो जो हम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दर पर्दा वो लोग आप ही के काम को कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने दिल से कोई ऐसी नियत कीजिए कि आपने किसी काम की इब्तिदा करनी है। आपको और आसान कर देती हूँ इस बात को, मसलन आप अपने दोस्तों में देखिए, कोई एक नेकी जो अभी आपकी किसी दोस्त ने नहीं शुरू की, आप कर लीजिए, पहल कीजिए, बिस्मिल्लाह करें, बारिश का पहला कतरा बने। हो सकता है आपको देखते देखते कई और जिनके दिलों में पहले से ख्याल थे लेकिन वो आप ही की शर्म से पीछे हटे हुए थे, वो आपकी सुन के कर लें। कोई चीज़ ख़ानदान में किसी में नहीं थी, आप शुरू कीजिए, मुमकिन है ना। बाज़ दफ़ा यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी एक पर्सनल तजुर्बा मैं आपको बताती हूँ कि जब यानी बाप भी था और बेटे भी थे, दो बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़ाहिर है कि जैसे सबका माहौल होता है वैसे होता है। तो जो बड़ा बेटा जब जवान हुआ तो उसकी दाढ़ी आई, तो वो उसने कहा कि मैंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवानी, वो सच्ची दाढ़ी उसको बोलते हैं, यानी उसने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। उसने जब ये बात की और उसने मतलब इससे इनकार किया, तो उस दिन बाप को एहसास हुआ कि फिर इसके बाद मुझे भी कोई हक नहीं बनता कि मैं भी इसको कटवाऊँ। उन्होंने उसी वक्त उससे शेक हैंड किया और कहा कि आज के बाद मैं भी दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा। बाप की भी हो गई। अब छोटा बेटा ज़रा थोड़ा चुलबुला सा और वही जो उम्र होती है ऐसी, उसको बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब घर में दो ने रखी तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने भी रख ली। तो क्या ऐसी छोटी छोटी नेकियां नहीं कर सकते? हम लोगों का मुंह क्यों देखते हैं? दुनिया में तो कभी नहीं देखते। खाना पकाते हैं दावत में तो कहते हैं ऐसा पकाऊंगी जो कभी किसी ने ना पकाया हो, कपड़ा ऐसा बनाऊंगी जो कोई देखे ना। आपको मालूम है कि लोग सिर्फ इसलिए हज़ारों खर्च कर देते हैं कि ऐसा जोड़ा किसी और का नहीं होगा। ब्रांड नेम्स या जैसे लोग गाड़ियों के नंबर रजिस्टर करवाते हैं, बाद लोग अपने ड्रेसेस भी रजिस्टर करवाते हैं। मेरे वालिद के दोस्त थे तो उनकी बेगम का एक बुटीक था अबू धाबी में, तो वो बताती थी कि यहाँ से जो जोड़ा हमें 100-200 का पड़ता है, हम बाज़ दफ़ा वो दिरहमों में 1000 दिरहम का भी बेच देते हैं। तो कहा क्यों? कहते हैं सिर्फ उसके साथ हम एक स्लिप लिख के देते हैं कि इस ड्रेस, वो हमसे एग्रीमेंट साइन करवाती हैं औरतें कि हम ऐसा दूसरा कोई जोड़ा नहीं बेचेंगे और सिर्फ ये महफिल में मेरा हो। तो साबिकून अल अव्वलून तो बने हुए हर जगह। फिर एक कभी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि किसी ने 7,000 रुपए का, पाकिस्तान की बात है, जूता खरीदा और बड़े इठलाते हुए कि ये आज जब मैं पहन के जाऊंगी तो क्या होगा। और जब किसी ने उनको खबर दी कि यही डिजाइन मार्केट में 400 रुपए के जूते में आ गए, तो उन्होंने उस जूते को धड़ से फेंका कि लानत करो ऐसे जूते पे कि जो 400 का आ गया, अब मुझे वो नहीं पहनना। तो दौड़ तो लगी हुई है ना, असल रुख बदलना है। अल्लाह इस्लाम इंसान की सोच सीधी करता है, पीछे नहीं करता। आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर इंसान में, बच्चे में भी है। आप नोट करके देखें, आपका बच्चा आपसे आगे चलता है, पीछे नहीं चलना चाहता। आप सारा दिन बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, ये ख्वाहिश है। सिर्फ इसको ट्रैक पे लाना है सही तरफ करके। इंशाल्लाह एक वक्त था कि आप इन लीड बनते थे किसी बुरी चीज़ के, और अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह जब आपको हिदायत मिलेगी तो उस वक्त आप उसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे कई एक्सपीरियंसेस लोगों के सामने मौजूद हैं जिसका इस वक्त वक्त नहीं है। आगे देखिए दूसरी चीज़, इसमें हमें क्या पता चली कि अल्लाह ताला ने, यानी साबिकून का जिक्र करने के बाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिले जुले अमल करते हैं। असल में अगर आप इस रुकू की तरतीब को देख रहे थे तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आगे बढ़ने वालों की बात की, फिर उसके बाद मुनाफिकों की बात की आयत नंबर 101 में, कि जो बदवी हैं मदीना में भी रहते हैं और अल्लाह के नबी को भी उनकी खबर नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका राज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनाफिक हैं। तीसरी दर्जे पे 102 आयत को आप देखेंगे, ये बिल्कुल तरतीब चल रही है आयतों की। तीसरे दर्जे पे जो लोग हैं ये हैं असल में जाने पहचाने लोग, और वो कौन है? आखरूना तरफू बिज़ुनूब खलत अमलन सालेहन, जिन्होंने अमल खलत मलत कर लिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। नमाजें पढ़ने की आदत भी है और गाने सुनने की आदत भी है, हैं? वो कहते हैं ना, निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बनकर। क्या आज के दौर में ऐसे लोग नहीं दिखते कि जो नमाजों के वक्त में नमाजी भी हैं और गानों की महफिलों में गाने भी गाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि खलत मलत हो गई। यानी ये आयत जो है वाकई मुझे हमेशा मुझे रोक लेती है अपना मुहासबा करने के लिए कि आज के दौर में जो मामला हो चुका है वो कैसा है, कि मुसलमानों की अक्सर ये हालत हो चुकी। रमज़ान आएगा तो मस्जिदें भरेंगी और ईद की रात कुछ और जगह भरेंगी। असल बात क्या है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए क्या फरमाया, इसको हाईलाइट कर लीजिए। हर बंदे के अंदर जितनी जरूरत है वो उतना ही काम करेगा। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, शायद अल्लाह माफ कर दे। यकीन नहीं दिलाया, पहले पीछे क्या हुआ था साबिकून और अव्वलून के लिए? अल्लाह ने कह दिया कि मैंने उनके लिए बना ली, जन्नतें बना दी। तो गोया के इससे क्या मालूम हुआ कि ऐसे लोग रिस्क पे हैं, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया। ये उससे तो बेहतर है कि हमेशा ही बुरा करना, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। अल्लाह ने ना माफ किया तो क्या बनेगा? लिखिए अपने पास, जब कोई गुनाह करती हूँ तो क्या मुझे ये एहसास होता है अगर इसी पे मेरी मौत आ गई तो क्या होगा? और जिस बंदे की मौत जिस काम पे आती है उसी काम पे फिर उसका हशर होता है। दूसरी बात, क्या मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मेहनत से की हुई नेकियां मेरे कुछ गुनाहों की नजर हो जाए? तीसरी बात, अपने जायजे के लिए लिखिए, मैं उस इंसान के बारे में क्या रवैया करती हूं जो कभी तो मुझे खुश करे और कभी नाराज करे? अगला नुक्ता लिखिए, मैं अपने बच्चों से कैसा मामला पसंद करती हूं, क्या हमेशा मेरी बात माने या बिल्कुल ना माने, या कभी माने और कभी ना माने? और आखिरी बात लिख लीजिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को जब मेरे नामे आमाल मेरे उसके सामने पेश किए जाएंगे तो नाफरमानियों की सूरत में मेरा क्या रवैया होगा। और आखिर में यह है कि अगर ऐसी आदत है शऊर के साथ ऐसा है तो गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। याद रखिए कि बंदा मोमिन से गुनाह होते हैं लेकिन वो करता नहीं, ये जुमला लिख लें। गुनाह हो जाता है लेकिन वो करता नहीं। प्लान करके मोमिन गुनाह नहीं कर सकता, लिख लें। हर वो गुनाह जिसकी पहले से प्लानिंग करती हूँ उस वक्त ईमान मशकूक हो जाता है। हाँ, चल रहे थे कदम फिसल गया, खड़े हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कोई जान के फिसले तो उसको क्या कहेंगे? अफसोस की बात क्या है कि आज हम गुनाह कौन से करते हैं? प्लानिंग करके करते हैं, दूसरों को साथ मिला के करते हैं और बड़े बड़े इश्तिहार दिला के करते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी तौबा कबूल कर ले। और असा का लफ्ज़ जो है ना, ये मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहा है इस वक्त, शायद माफ़ कर ले, सोचेंगे कभी आप अपना रवैया देखें, कोई आपके से ऐसा करे तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ सोचूंगी, वो कहें अच्छा मम्मी माफ कर दें, ओके आई विल थिंक अबाउट दिस, गो हेड आगे चले जाओ। तो लिहाजा असल बात क्या है कि दीन को खेल नहीं बनाना, बंदा मोमिन के अंदर इसकी जरूरत ही नहीं होती कि वो एक छोटी सी बात में भी रब को नाराज कर दे जान के। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को कुछ हुक्म दिया ऐसे लोगों के बारे में जो सदका खैरात लेके आते हैं। नंबर एक क्या कहा कि आप इनके अमवाल को कबूल कर लें, फिर इसके बाद इनके लिए दुआ करें क्योंकि आपकी दुआ इनको सुकून देगी और अल्लाह से फिर इनके बारे में खुद भी आप दुआ कीजिए। इससे क्या पता चला कि अगर कोई बंदा दीन का कोई काम करता है, कुछ माल देता है या कुछ, तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। ये अच्छा असूल है। बाज लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बस हमने दुआ भी नहीं लेनी, हमने खालिस अल्लाह के लिए किया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो ये बात दुरुस्त नहीं। जो दिल की खुशी से दुआ निकलती है वो फिर कबूल भी होती है। फिर इसके बाद आखिर में हमने देखा एक मस्जिद का जिक्र। इस मस्जिद का जिक्र है मस्जिद दरार के नाम पे। अल्लाह ताला ने इसके बारे में 6 बातें बताई। थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगी इसका आप बैकग्राउंड बताने को कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना काम शुरू किया तो कुछ मुनाफिकों को लगा कि हमारे भी पास एक मरकज होना चाहिए जहां बैठ के हम बातें कर सकें इस्लाम के खिलाफ, और वहां मीटिंग्स हों और सरगर्मियां हों। करें कैसे? अब अगर कोई उसका नाम कोई ऐसा नाम रख देंगे तो वो तो फिर पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक मस्जिद बनाते हैं, बाजाहर मस्जिद होगी लेकिन असल में वो हमारा साजिश खाना होगा, और ऐसा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां एक दफा नमाज पढ़वा लेते हैं। नतीजे में क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा ये मस्जिद है, और मकसद उसके बहुत सारे थे जो अभी आपके सामने रखूंगी। अल्लाह ताला ने उस मस्जिद के 5 इधर काम बताए। जब नबी सल्लम के पास ये लोग आए तबुक में जाने से पहले कि अल्लाह के नबी सल्लम आप वहां के नमाज पढ़ा दें, आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया कि क्यों बना रहे हो, मस्जिद नबी तो मौजूद है। कभी भी नहीं कोई सच्चा दीन वाला किसी दूसरे दीन वाले को काम करता देख के परेशान नहीं होता, वो तो खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं अकेला था, आज मेरे साथ एक और शामिल हो गया। आपने सिर्फ ये कहा कि इस वक्त मसरूफियत बहुत है, तवज्जो कहीं और थी, तबूक से वापसी पे मैं आके इसमें नमाज पढ़ा दूंगा। अब नबी सल्लम जब वापस आ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने पहले से खबर दे दिया कि आप वहां नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ला तकुम फीही अबदा। क्यों? कि अल्लाह ताला ने फिर उनका पोल खोल दिया कि ये मस्जिद तो असल में लोगों को दीन से दूर करने की बात है। तो 5 बातें इसमें पता चली हमें मस्जिद जरार के बारे में। नंबर 1, दावत हक को नुकसान पहुंचाने के लिए है। असल में वो मस्जिद क्यों थी? कि हक के रास्ते से रोका जाए। दूसरी बात, अल्लाह की बंदगी की बजाय कुफर की तरफ दावत देने वाली थी। तीसरी, उसकी वजह क्या थी? मुसलमानों में फूट डालने के लिए। चौथी बात यह थी कि वो अल्लाह के दुश्मन जो थे उसको एक अपने लिए एक ऐसी जगह सोच रहे थे जहां बैठ के साजिशें तैयार करें। और 5वीं बात बताई कि ऐसी मस्जिद बना के भी उनके दिलों में शक ही रहेगा, और अल्लाह ताला ने उसको बड़े प्यारे लफ्जों में बताया कि वो ऐसी मस्जिद है जो खोखली जमीन पे बनी हो। कभी आपने देखा हो दरियाओं के किनारे नीचे से जमीन को पानी खा चुका होता है लेकिन ऊपर भड़ा हुआ किनारा होता है। कभी समंदर के किनारे आप जाके देखें तो माएं वहां करीब भी बच्चों को नहीं जाने देती कि देखो नीचे जगह खाली है। तो ऐसी मस्जिद फरमाए ऐसी है कि जो ही वो बनी अपने बोझ से ही वो गिर जाएगी। हमें इससे अमल की बात क्या पता चली कि कभी भी दीन का नाम लेके ऐसी जगह कायम नहीं करनी जहां दीन को नुकसान दिया जाए। नंबर 1। दूसरी बात, लोगों को मैं फूट डलवाने के लिए कोई दीन की इमारत कायम नहीं करनी। अगली बात, अगर कोई इमारत अल्लाह के नाम पे बनी है तो वहां से अब इस्लाम ही और मुसलमानों ही के खिलाफ साजिशें नहीं कायम करनी। और हर बंदा दीन का काम करने वाला इन आयात पे जरूर रुक के सोचे कि जब भी मैं कोई काम करती हूं उसकी बुनियाद क्या है। अगर आप किसी के मुकाबले पे करते हैं तो आपने बिल्कुल अपने अजर को जाया कर दिया। अगर आप तफरके की बुनियाद पे करते हैं तो एक वक्त आएगा कि आपकी भी बुनियाद को कोई आके गिरा देगा। लिहाजा असल चीज जो आबाद करती है इन जगहों को वो क्या है? तकवा। और एक और आखिरी चीज जो इस रुकू का थीम पॉइंट है जिस पे इसका नाम है, उसका जिक्र आगे आएगा तो इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल वहां देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र हुआ कि जो तबूक से पीछे रह गए थे لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے وقت وہ پھر بہانے نہیں بنائے انہوں نے، بلکہ سچ کیا. انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا.